ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਕੀਤਾ, ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਨੇ, ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਵਧਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਬਾਅਦ ਕਾਰਨੀ ਟਰੂਡੋ ਲਿਬਰਲਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਖੜਾ ਕਰਨ, ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿਓ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ।
मेरी पूरे साल की सेविंग $400 हुई है।
मेरी सेविंग $350।
मेरी सेविंग सिर्फ $100।
और मेरी सेविंग सबसे ज्यादा हुई है। मैंने सेव किए हैं $1,775।
क्या चमत्कार किया, मुझे भी गुड़ सिखाओ ना।
कोई बात सादा सी है, हमारे पास दो गाड़ियाँ और एक घर है, और इन सब की इंश्योरेंस मिलाकर मैंने जबरदस्त सेविंग की है। और ये जादू किया है ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह ने। आप भी अपनी गाड़ी और घर के इंश्योरेंस में खूब सेविंग कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन अप्लाई। ऑल स्टेट पिकरिंग एजेंसी के राजा बादशाह 6472903773 6472903773।
ਪੀਲ, ਡਰਹਮ, ਬੈਰੀ ਅਤੇ ਸੂ ਸੈਂਟ ਮੈਰੀ ਪੁਲਿਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਫ ਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਓਨਟੈਰੀਓ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਲਿਬਰਲ ਕੈਚ ਐਂਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਟ ਓਫੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਫੜੇਗੀ, ਬਾਰਡਰਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰੇਗੀ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗੀ। ਐਡਵਾਂਸ ਪੋਲ 18 to 21 April ਤੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਲਿਬਰਲ ਟਰਮ ਟਾਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ।
कौन कहता है कि इंश्योरेंस कंपनियां वक्त पर क्लेम अदा नहीं करती। एक और मिसकंसेप्शन कि लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी या फिर ट्रेवल इंश्योरेंस बहुत महंगी है। नहीं साहब, आप एक बार इंश्योर प्रो के फजल वदूद से बात कीजिएगा। 28 years ऑफ अंडर राइटिंग एक्सपीरियंस एंड 2 years इन द फील्ड। लाइफ, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी, ट्रेवल इंश्योरेंस, हर इंश्योरेंस के मामले के लिए फजल वदूद ऑफ इंश्योर प्रो 905-607-5000 905-607-5000।
वहमों गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास।
प्रॉपर्टीज रेजिडेंशियल और कमर्शियल, बाइंग और सेलिंग,
इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज या फिर कॉन्डोमिनियम्स इन द डाउनटाउन टोरंटो।
वी विल अरेंज योर मॉर्गेज,
आल्सो अ हाउस वार्मिंग गिफ्ट।
सर्विस इज आवर प्रायोरिटी,
कस्टमर सर्विस इज आवर प्राइड। प्लीज एक्सपीरियंस द डिफरेंस। आप घर खरीदना या घर को बेचना चाहते हैं, घर की इवेल्युएशन के लिए एक दफा कॉल कीजिए आरिफा मुजफ्फर 6478986245 8986245।
वेलकम बैक तमाम सामीन जो हमें सुन रहे हैं 770 AM डायल पर प्रोग्राम साजो आवाज। मैं हूं आपका होस्ट आमिर अहमद, और खबरों के सिलसिले के लिए हमारे ऑफिस में, बल्कि स्टूडियो में आ गई हैं। ऑफिस में तो खैर सुबह से ही होती हैं, लेकिन स्टूडियो आ गई हैं, वो कहते हैं ना अगले पायदान पर पहुंच चुकी हैं, शाजिया मलिक साहब। आइए पहले उनको खुश आमदीद कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कैसी हैं आप?
WS हमारे हमवतनों, ठीक हो?
मेरे अजीज हम वतनों,
मेरे
आपको रोज सिखाना पड़ता
ये
दिल से नहीं निकल रहा आपके,
एज का तकाजा
है। नहीं, ये दिल से नहीं निकल रहा, दिल में भी निकलता है। मेरे अजीज हम वतनों, अस्सलाम वालेकुम।
मेरे अजीज हम वतनों, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
ये तुम रोज कंजर्वेटिव बन के क्यों आते हो?
सपोर्ट चाहिए उनको,
तेरा ही तक वोट चाहिए।
मैं तो डालाया।
अच्छा अच्छा,
मैं डालाया, जिसको डालना था मैं डालाया।
हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। लेकिन ये मुझे इनके कोई सितारे चमकते हुए नजर नहीं आ रहे।
अच्छा, आपको नजर नहीं आ रहे?
कुछ चक्कर है।
देखिए, सितारे जो है ना, वो किसके चमकेंगे? हाँ। ये 28 को फैसला होगा।
हाँ।
28 तारीख को,
ठीक है।
तकरीबन कितने 9 बजे तक फैसला हो जाता है, 9-10 बजे करीब। हाँ। करीब जो है वो खत्म हो जाएगा।
लेकिन जो 770 का चांद है वो वो तो ऑलरेडी चमक रहा है
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कल बताया ना, चांद जो है वो रात में रोशनी दिखाता है।
अच्छा अच्छा, दिन में अन्ना हुआ होता है?
दिन में तो सूरज होता है ना। देखो देखो, ये भी एक साइंस है, लोगों को समझ। दिन में तो वैसे समझने की कोशिश करें, दिन में तो रोशनी होती है, सूरज की जरूरत है। रात में रोशनी चाहिए होती है तो चांद की जरूरत होती है। हालांकि ये रोशनी भी सूरज की है, कैरी ऑन वहीं से, लेकिन देखो जो सामने है उसकी वैल्यू होती है।
ठीक है ठीक है, बिल्कुल
अल्हम्दुलिल्लाह।
ये इतनी गहरी बात आपने करना किस उस्ताद से सीखा? हमें भी उस उस्ताद का पता।
ये मुस्तनसर हुसैन तारर साहब से,
जिनके वालिद का नाम मुतज़लज़ल हुसैन तारर था।
ऐसा ही पहुंच गए यहाँ, पहुंच जाती
है वही वाले हैं।
क्योंकि वो वालिद साहब वाली, देखो हमने तो चाचा जी को यानी मुस्तनसर हुसैन तारर साहब को अपने बचपन में ही इस एज में देखा कि वो 45 के पैदाइश थे, और अगर आप उनके वालिद को भी जानती हैं तो फिर आप तो माशाल्लाह।
हम तो 45 के पैदाइश वाले हैं ना, हम तो बल्कि 40 के हैं।
हम तो स्कूल जा रहे होते थे सुबह सुबह, अम्मी डांट रही होती थी, और वो कुरतुलैन ऐनी साहिबा और मुस्तनसर हुसैन तारर साहब पीटीवी पे मॉर्निंग, क्योंकि वो 5 मिनट का कार्टून आता था, उस पर चित्रौल पड़ रहा होता था कि हमारा होता कि बस वो वैन बाहर खड़ी है, वो पाया 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 बजना शुरू हो गई है, और हमें वो 7:30 बजे का, मुझे याद एग्जैक्ट याद नहीं, शायद 7:30 ही होते होंगे सुबह के। तो वो ये तो हम तो ये इस टाइम के लोग हैं, बच्चे
बचूंगड़े।
तो वो मुस्तनसर तारर साहब पहला मॉर्निंग शो जो है वो
पीटीवी, याद करो कितना प्यारा वक्त है, बाहर बस खड़ी है,
बस
हॉर्न बजा रही है।
होता था ये तो मम्मी पीछे टिफिन बॉक्स लेकर आ रही होती है, कभी पानी की बोतल भूल गए, मुझे याद है
माँ गालियां दे रही है, आपका
चला रही होती थी कि वो पीछे वहाँ से पै 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 हॉर्न बजा रहे, क्योंकि उसको आगे जाके और भी बच्चों को पिक करना होता था,
और हम कार्टून देख रहे हैं,
और हमें नहीं, वो कार्टून ऐसी टाइम पे आता था कि जब वो बाहर आके वैन वाला खड़ा हो जाता था। ये बड़े मसाइल काफी टाइम तक रहे।
अच्छा,
तो 5 मिनट के कार्टून के लिए जो है ना जिंदगी
झंड हो गई।
भाई देखें 24 घंटे कार्टून चलता है टीवी पे, कार्टून नेटवर्क जो है, हम 5 मिनट के कार्टून के लिए, वो भी कौन सा आता था, वॉल्ट डिज्नी का
टॉम
एंड जेरी, मिकी माउस, पिंक पैंथर जो ज्यादा बोलता ही नहीं था, इसी डोनाल्ड डक, ये वो कार्टून से जिसमें बंदा खुश हो जाता था। शाम में कहीं जाके जब पोपाय द सेलर, शाम में जब एनटीएम आ गया, जब लेट, जब थोड़ा सा ऊपर एज में आने लग गए, यानी 8-9 साल की एज में मेरे पास होगा, 10-12 साल की एज में होगा, तो वो जब एनटीएम आया या एसटीएम था, फिर एनटीएम आया, तो फिर शाम में जो है वो कुछ अच्छे कार्टून आए, ट्रांसफॉर्मर टाइप के, स्टार हॉक और दूसरे भी, थोड़ा सा लगता था कि हाँ यार अब हम भी बड़े हो गए, टेक्नोलॉजी बड़ी होती जा रही है, और फिर रात में अक्सर जो है वो एक अच्छी इंग्लिश मूवी आ जाती
थी।
तो क्या जमाना था भाई,
क्या जमाना था,
और सब चीजें सही चल रही होती थी,
सब सही सब सही,
मतलब टाइम इतना होता था। अब आजकल ऐसा लगता है 24 घंटे जो है ना वो 2 घंटे हो गए,
2 घंटे हो गए, टाइम ही नहीं है,
जबकि हमारे पास स्पीड ट्रेन है, जहाज भी तेजी से ले जाते हैं, वॉच भी हमारी स्मार्ट है, फोन भी हमारा स्मार्ट है,
टाइम किसी के पास,
हर चीज स्मार्ट हो गई है।
हाँ,
लेकिन वो टाइम जो है ना वो कहीं ना कहीं छोटा होता जा रहा है। सूरज भी अपने वहीं से निकलता है, आज तक कभी अल्लाह ने कहा ना कि अपने टाइम पे निकलता है, अपने टाइम पे जाता है, ठीक है ना, लेकिन ये वो तो वहीं निकल रहा है, वहीं जा रहा है, लेकिन हमने ऐसा क्या कर लिया है 20-25 सालों में, 30 सालों में, कि हमारा आपका टाइम जो अभी अभी मंडे शुरू होता है तो पता चलता है जी कल फिर फ्राइडे आ गया।
एग्जैक्टली, वैसा ही टाइम दौड़ रहा है,
इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि वक्त अपनी कदर खोता जाएगा, बड़ों ने कही ये बात, तो वो ये वक्त जो अपनी कदर खो रहा है वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं यही है कि हमें पता नहीं होता कब सुबह उठते हैं, बस भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, फिर शाम हो जाती है, फिर भागे, अगले दिन सुबह होती है, फिर दुनिया जो है वो किसी अजीब उसमें फंसी हुई है।
बिल्कुल।
और फिर ऊपर से वो 2-3, मैं कल देख रहा था, वो एक अल्फापा ने भी कवर किया था, वो पता नहीं 13,000 साल पुरानी कोई स्पीशीज थी वो भेड़ियों की, जो कि उसमें मूवीज में भी दिखाया गया, लॉर्ड ऑफ द रिंग और किसमें जो बड़े बड़े भेड़ के दिखाए, उनको रीजनरेट कर लिया भाई, उनको रीबर्थ कर लिया, उनको उनका डीएनए लेके मिक्स करा के, पढ़ रहे हैं अभी 2-3 दिन पहले अल्फापा भी न्यूज, तो वो मैं कल रात ऐसी वीडियोस देख रहा था, मुझे भी शौक है, मैंने कहा थोड़ा सा देखूं, तो दुनिया क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं पिछले जमाने के जो बड़े बड़े स्पीशीज थी जो अब नहीं है किसी भी वजह से, उनको भी दोबारा रिवाइव किया जा सकता है।
चलो आज हम आपको एक अंडों की अच्छी स्टोरी बताएं।
अंडे देखें, अमेरिकन के सामने अंडों का नाम ना है, वो बेचारे जितने महंगे अंडे खरीद रहे हैं ना उनके, मैं उनके दिली
अंडों का फंडा अब शुरू,
अंडों का फंडा हो गया,
अब ये आ जाओ
और महंगे हो जाएंगे।
हाँ, देखेंगे।
चले जी, खबरें सुनाएं।
ओके जी, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय जो है वो कौन बताएं जरा,
बिल्कुल राजा बादशाह जनाब, ऑल स्टेट एजेंसी में राजा बादशाह। और आप अगर सालाना जो है $1775 जो कि मेरे बचा दिए उन्होंने,
जिसकी वजह से आमिर जो है यूरोप के टूर पे जा रहा है, आप सोचें बस
नहीं, अब तो ये हालात बेहतर हो जाएंगे जैसे अभी आरफा
अभी
छह
डॉलर
भी बचे हैं ना। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कि कनाडा की भी जो मामला है तो थोड़ा बॉर्डर खोलेंगे तो मैं सबसे पहले जाके वहाँ पैर रख के ना खड़े होकर तस्वीर खींचा के भेजूंगा डॉनल्ड ट्रंप को।
फ्रॉम कनाडा टू
अमेरिका,
यस
इंशाल्लाह सही हो जाएगी,
ठीक हो जाएगा। हाँ जी, तो आप जाएं और आप बोलें कि आप आमिर के दोस्त हैं, तो जब आप बताएंगे उनको आप आमिर के दोस्त हैं तो आपको ढेरों पैसे जो हैं वो बचाएंगे राजा बादशाह जी। और अगर आपको बंडल डील चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स की तो आप प्लीज जाएं हमारे सुल्तान भाई के पास, ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे होते हैं, 801 बोवे ड्राइव वेस्ट पे हैं, तो आप जाए और उनसे बहुत अच्छे जो कलर के भी आपको अप्लायंसेस चाहिए बहुत अच्छे कीमत पे जो रेस्ट ऑफ द मार्केट में आपको नहीं मिलेगा। अगर आपको खाना खाना है तो आप जाइए फैसल छठा साहब के पास, उनके जो अब दो रेस्टोरेंट्स खुल गए हैं विलेज टेस्ट, एक मिसिसागा में एक ओकविल में, तो वहां पे बहुत ऑथेंटिक अच्छे खाने आपको खाने को मिलेंगे, मजा आएगा आपको आप जाएंगे तो। खाना खाने के बाद अगर हड्डी वड्डी फंस गई है, दांत खराब हो गया, तो फिर आप जाइए डॉक्टर नाजिया रहमान के पास, और नया उनका डेंटिस्ट्री ऑफिस जो है वो अब रिजवे में आ गया है, तो आप वहां जाएं दांतों की सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं आपका ट्रक भागता फिरे सड़कों पर और रुके ना, तो फिर आप क्विक ट्रक ल्यू QTL के पास आप जाए, और एक तरफ से आप जाएंगे 15 मिनट्स में वो आपका सारे मसले आपके ट्रक के हल करके आपको बाहर निकाल देंगे। स्पीयर एंड मके, ना फटने वाले अच्छे कपड़े, इटालियन वूल और इटालियन कॉटन और बहुत सारी इटालियन टाइप की चीजों के जिससे जो बने हुए उनके कपड़े जो खराब नहीं होते, तो आप जाके उनसे जो है ले सकते हैं। अभी ब्रिटानिया रोड पे उनका नया लोकेशन आ गया है, तो वहां आप जाके उनको जरूर विजिट करें और जो है आप अच्छी सुविधाएं ले सकते हैं। और जनाब ये हमारे पास एक नया जो ऐड शुरू हुआ है टैप टैप सेंड, ये भी आप ने अगर पैसे कहीं पे भी भेजने हैं दुनिया के किसी भी हिस्से में तो आप ये खर्च कर सकते हैं। डाउनलोड कर लीजिए इनका ऐप और इनको इनका यूज करें प्रोमो कोड Radio20 टू गेट एन एडिशनल $20 ऑन योर फर्स्ट सेंड ऑफ $200 और मोर। तो बहुत ही अच्छी सर्विस है, इजी है, कन्वीनियंट है, बस आपने इनका ऐप डाउनलोड करना है, अपना अमाउंट लिखना है और जिधर भी आपको भेजना है उसका अकाउंट नंबर आपने लिखना है और सेंड करना है, इजी। और अच्छा, आपको रेट भी अच्छा मिलेगा, आप कंपेयर कर सकते हैं मार्केट के साथ क्या रेट है, तो मुझे लगता है कि आपको काफी अच्छा जो है रेट दिखेगा। अच्छा जनाब, वही जो हमारी बात है कि हम जरूर दो एवरीडे, जब से इलेक्शन का बिगल बजा है हम अपने ऑन्टेरियो सॉरी कनाडा के जो इलेक्शन की दो खबरें हम जरूर करते हैं एटलीस्ट, तो ज्यादा भी करते हैं, लेकिन जो है वो हम अपना अभी 28 तक वैसे ही सिलसिला अपना कंटिन्यू करेंगे। तो लिबरल्स जो है आज 6 पॉइंट्स जो है वो आगे है, और आज डे 32 है ऑफ 36 डे फेडरल इलेक्शंस। नैनोस का जो पोल आया उसमें दिखा रहे हैं लिबरल्स 44% पे हैं, ये जरा नीचे आ गए हैं, कल तक आपको पता ही है ना कि 8% था इनका परसेंटेज पॉइंट, आज 6 है, 44% ये भी नीचे है, लेकिन फिर भी आगे है कंजर्वेटिव से 39% पे कंजर्वेटिव, एनडीपी 8% ये भी नीचे आया है, ब्लॉक के बैकवा 5% पे ही है, ग्रीन 3%, पीपल्स पार्टी ऑफ कनाडा 1%, लिबरल सपोर्ट जो है वो स्ट्रांगेस्ट है ऑन्टेरियो एटलांटिक कैटर और क्यूबेक में जो कि कल तक खत्म हो चुकी थी बीसी में, आज फिर से बीसी में भी ये स्ट्रांग नजर आ रहे हैं। कंजर्वेटिव स्ट्रांगेस्ट हैं प्रेरीज के अंदर, ऑन्टेरियो में लिबरल्स 13 पॉइंट्स का इनको एडवांटेज जो था वो अब हौले हौले थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, लेकिन फिर भी एडवांटेज तो है, तकरीबन 8 पॉइंट्स का एडवांटेज है। तो अब ये लिबरल्स 48% पे है, कंजर्वेटिव 40% पे, एनडीपी जो है वो भी नीचे आया है 7% पे है, क्यूबेक में लिबरल्स 42% पे, कंजर्वेटिव 25% पे, और जो सेकंड नंबर पे पहले थी ब्लॉक क्यूबेक वा 24% पे, वो अब नीचे आ गई है। प्रेरीज में कंजर्वेटिव्स के पास 55% सपोर्ट है, लिबरल्स के पास 34%, एनडीपी 9%, बीसी के अंदर लिबरल्स 41% पे स्टैंड करते हैं, कंजर्वेटिव 38%, एनडीपी 16%, लिबरल्स जो है वो अटलांटिक में भी लीड कर रहे हैं, 58% सपोर्ट है, कंजर्वेटिव्स को 32%, एनडीपी 7%, अगेन 51% वुमेन जो है वो कह रही है कि हम लिबरल्स को सपोर्ट करेंगे, 31% कंजर्वेटिव्स को, 9% एनडीपी, 37% जो मेन है वो कह रहे हैं लिबरल्स के लिए, और बहुत बड़ा जो तादाद है यानी कि 47% जो है वो कंजर्वेटिव्स को, 6% एनडीपी को। कंजर्वेटिव्स को एडवांटेज है अमंग वोटर्स अमंग 35 अंडर 35, यहां पे इनके पास 47% सपोर्ट है, लिबरल्स के पास 35%, एनडीपी 11%, जो 35 से 54 के बीच में जो लोग हैं उसमें कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स के पास एक जैसा सपोर्ट है अभी, 38%, एनडीपी 7%, 55 एज एंड अबव के जो लोग हैं वो 52% जो है उनमें से वो कहते हैं कि हम लिबरल 53% वो कहते हैं लिबरल्स को देंगे, 33% कंजर्वेटिव्स को और 6% एनडीपी को. प्रेफर्ड पीएम जो है अभी भी कॉर्नी साहब हैं एट 49% और 14 पॉइंट्स का इनको तकरीबन एडवांटेज है. जो पीए पॉलीएफ है 35% उनको सपोर्ट है और जगमीत सिंह को 4%. फॉर्मर एनडीपी के जो लीडर है टॉम मिल्केयर वो कह रहे हैं कि जगमीत सिंह जो है शायद कंटिन्यू नहीं रख सकेंगे अपना पार्टी एज अ पार्टी लीडर, क्योंकि एनडीपी ने अगर लूज कर लिया अपना ऑफिशियल स्टेटस पार्लियामेंट में तो ये आगे नहीं चल जाएंगे. अगर आपको ऑफिशियल अपना पार्टी स्टेटस चाहिए तो एटलीस्ट आपके पास 12 सीट होना चाहिए और अभी जो प्रिडिक्शंस आ रहे हैं कि शायद ये सिर्फ 9 सीटें ही जीत सकेंगे. अभी जब डिसॉल्व हुई थी असेंबली तो इनके पास 24 सीट्स था हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो उसी चीज का जिक्र मिल्केयर साहब कर रहे थे. वो कहते हैं हमको मालूम है कि रिजल्ट क्या होने वाले हैं और ये जो है मुझे लगता है कि ये फाइट नहीं करेंगे अपने पार्टी के हेड रहने के लिए. बहुत ही डिफिकल्ट टाइम है, ये पोल्स जो है जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो हमारी पार्टी के लिए अच्छा नहीं है. और आज रैली हो रही थी पोर्ट मूडी बीसी के अंदर और वहां पे जो है एनडीपी की हाफ ऑफ द सीट्स जो है वहीं से आती है. तो सिंह साहब ने आज वोटर्स को पूछा, उन्होंने कहा कि आपने डिसाइड करना है कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, या तो आप कॉर्नी साहब को सुपर मेजोरिटी दे सकते हैं या कि आप इनफ मेजोरिटी दे सकते हैं एनडीपी को ताकि वो पार्लियामेंट के अंदर जाए. सो प्लीज होल्ड द लाइन. अब जब इन्होंने ये कहा तो इससे पूछा गया कि भाई आपका क्या मतलब है टू होल्ड द लाइन, आपको लगता है कि एनडीपी के सेम नंबर्स आएंगे? तो उन्होंने कहा जी कि मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूं कि ऐसा होगा एंड वी विल मेक इट. और उनसे पूछा गया कि अगर आपका ऑफिशियल पार्टी स्टेटस आपके पास से चला गया तो आप क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा जी कि मैं इलेक्शन के बाद क्या होएगा उसको अभी नहीं देख रहा हूं. लेकिन इसके साथ साथ जो है कोई कंजर्वेटिव्स के लिए भी चीज अच्छी नहीं चल रही है. फॉर्मर कंजर्वेटिव कैबिनेट मिनिस्टर लीजा रेट जो है वो कह रही है कि मैं तो जिन अपने वोटर से, हालांकि खुद कंजर्वेटिव है वो, तो कहने लगी कि मैं तो जिन लोगों से वोटर से बात कर रही हूं तो वो इतने थ्रिल्ड नहीं है पीए पॉलीएफ की वजह से. पीए पॉलीएफ के जो कल इन्होंने अपना पार्टी प्लेटफॉर्म असल में दिया है ना, उससे भी लोग जरा काफी इनसे दुखी हो गए हैं. पीए पॉलीएफ साहब जो है आज न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे थे स्टोनी क्रीक के अंदर हैमिल्टन में और उन्होंने कहा जी मैं क्रैक डाउन करूंगा होमलेस एनकैंपमेंट्स में और टेंट सिटीज में. वो कहते हैं जी कि ये सारी स्पेस जो किड्स के लिए और बच्चों के लिए थी इससे भर्ती चली जा रही है और ये जो है इट इज बिकमिंग अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर एडिक्शन वायलेंस एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड क्राइम. उन्होंने कहा अगर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट आया तो बिल्कुल मैं पुलिस को क्लियर मैसेज दूंगा कि वो इसको डिसमेंटल करे और एंश्योर करे कि ये जो एनकैंपमेंट रेजिडेंट्स है ये इनको सर्विसेज अच्छे मिले, हाउसिंग, एडिक्शन ट्रीटमेंट, मेंटल हेल्थ सर्विसेज, क्योंकि ये जो हाफ डेड कॉन्कॉक्टेड बॉडीज है ये जो जमीन पे लेटे रहते हैं क्योंकि इन्होंने फेंटेनॉल का ओवरडोज लिया होता है तो हम इसको अलाउ नहीं कर सकते कि ये एनकैंपमेंट्स जो है सिटीज के अंदर केओस बनाएं और उसके लिए हमारे पास कुछ कंपैशन भी नहीं है. कंजर्वेटिव जो है उनको काफी बैकलैश मिल रहा है उनके प्लेटफॉर्म की वजह से क्योंकि $100 बिलियन का ये डेफिसिट दिखा रहे हैं. वैसे तो मार्क कॉर्नी साहब का भी जो है वो 225 बिलियन दिखा रहा है डेफिसिट इनका प्लेटफॉर्म, लेकिन इन्होंने आज एक्यूज किया पीए पॉलीएफ को. उन्होंने कहा जी कि ये जो इन्होंने बिल्कुल सिर्फ फैंटम नंबर्स दिए हैं, दे डोंट मीन एनीथिंग. और खासतौर पे लोग भड़क गए हैं कल से जब से इन्होंने कहा जी कि ये एड वेड और बाकी जो सब चीजें हैं उनके ऊपर हम पैसे रोक देंगे. कंजर्वेटिव जगमीत सिंह साहब जो है वो आज एडमिंटन में थे, वहां पर उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स किए हैं और इन्होंने फॉलो किया है फिर अब मतलब करेंगे ग्रीन पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी के लीडर्स को जो लोग आज जो असेंबली ऑफ फर्स्ट नेशन है उनको कर रहे हैं, पहले वो करेंगे और फिर उसके बाद जो है जगमीत सिंह साहब भी फर्स्ट नेशंस के साथ बात करेंगे. तो ये जो है जी हमारे लीडर्स का आज का सारा जो था वो दिन का डिटेल जो था वो था. टोरंटो की जो मेयर हैं ओलिविया चाओ वो बहुत ज्यादा जो है वो उदास हैं. वो कहती हैं जी कि हमको बहुत ज्यादा वर्क हार्ड करना पड़ेगा क्योंकि अमेरिका से बहुत सारे गन्स आ रहे हैं जो कि हमारे टीनेजर्स के हाथों में जा रहे हैं और ये डेडली एक्सचेंज ऑफ गन फायर जो है ये बिल्कुल ठीक नहीं है. ये हुआ क्या है? हुआ ये है कि टोरंटो पुलिस और एक 16 साल के बच्चे के बीच में जो है ये एक्सचेंज ऑफ गन फायर हुआ है जिसके अंदर ये 16 साल का बच्चा जिसको हॉस्पिटल में रश किया था लेकिन उसकी डेथ हो गई है. अब वाकया क्या है? वाकया ये है कि पहले तो ओलिविया चाओ ने रिपोर्टर से बात की कि हमको ये इन बच्चों को गैंग एक्टिविटी से बचाना पड़ेगा और जो गन्स है उनके हाथ से निकालना पड़ेगा और इसको टोरंटो से तो बिल्कुल ही निकालना पड़ेगा. जब इस बच्चे के डेथ की खबर आई तब इन्होंने ये बयान दिया. उसके ऊपर ऑन्टेरियो एसआईयू जो है उसने एक जो है वो अब इन्वेस्टिगेशन भी बिठाया है टोरंटो पुलिस ऑफिसर के ऊपर जिन्होंने कि एक ने गाड़ी को नॉर्थ यॉर्क में रोका था, उनके साथ दूसरे भी कुछ लोग थे, क्योंकि उस गाड़ी की जो फ्रंट लाइसेंस प्लेट थी वो नहीं थी, उसके अंदर 6 लोग बैठे थे। जो पुलिस ऑफिसर का बॉडी कैम है वो ये शो कर रहा है कि वो एक लड़की जो इन सारे लड़कों के बीच में बैठी हुई थी बिल्कुल पीछे के सीट के ऊपर, उसको पूछा कि इनमें से कोई आपका बॉयफ्रेंड है इन लड़कों के बीच में, और फिर वो पुलिस ऑफिसर जो है उसने लैच पुल किया और जो सीट है सामने की उसको फोल्ड करके और उनसे पूछा, तो वो यंग लड़की आ गई और फिर उसके बाद साथ ही जो है एक मेल आया, लड़का निकला, यही 16 साल का बच्चा, और उसके हाथ में गन थी और उसने ऑफिसर पे फायर किया तो वो ऑफिसर पीछे हो गया, उसको गोली नहीं लगा, लेकिन उसने फिर जो है बेशुमार जो है वो गोलियां चलाए, उसमें से जो है कुछ गोलियां उस बच्चे को लगी और फिर उसकी डेथ हुई। तो इसके अलावा जो दूसरे बच्चे उसमें बैठे हुए थे वो भी 16 से 20 ईयर्स के बीच में थे, कुछ के ऊपर तो कुछ एक दो चार्जेस भी है और बाकी सारों के ऊपर भी अब चार्जेस लगाए गए हैं। तो अब ये टेस्ट किया जाएगा, अभी तक ये टेस्टेड नहीं है कोर्ट के अंदर। ये जो आप हमारी स्क्रीन पे तस्वीर देख रहे हैं, ये देख रहे हैं वैंकूवर फायर फाइटर्स की, क्योंकि आज बहुत सारे बिल्डिंग्स जो हैं वैंकूवर के ग्रैंड व्यू वुडलैंड के अंदर, वहां पे ये जो है आग लग गई थी और ये हौले हौले फैलने लगी। एटलीस्ट 2 बिल्डिंग्स जो है उनको तो इन्होंने काफी बुरे तरीके से जो है वो अफेक्ट किया है, एक जो सिंगल स्टोरी बिजनेस बिल्डिंग थी और दूसरा जो था वो मिक्स्ड ऑक्यूपेंसी बिल्डिंग था जिसमें के रेजिडेंशियल फ्लोर्स भी थे और बिजनेसेस भी थे। ये अर्ली मॉर्निंग कम्यूटर्स जो था उसको फिर पुलिस ने कहा था कि ट्रैफिक का डिस्ट्रप्शन आ सकता है तो आप दूसरे एरियाज ले लो, और क्रू जो थे इसको ब्लेज को बंद करने की कोशिश कर रहे थे। अभी तक की जो न्यूज आई है वो यही बता रही है कि बिल्डिंग्स को काफी नुकसान हुआ है, रेजिडेंट्स को बोला था कि जी आप अब यहां से निकल जाए, तो रेजिडेंट्स जो है अभी तक बेचारे बहुत सारे डिस्प्लेस्ड हैं, तो ये काफी अफसोस की खबर रही। अब जो चाइना है आज उसने कहा है जी कि आवर डोर्स आर ओपन फॉर ट्रेड टॉक्स विद द यूएस, क्योंकि ट्रंप साहब ने कुछ ऐसा सिग्नल दिया है कि वो सब्सटेंशली लोअर करेंगे टैरिफ्स को। अकॉर्डिंग टू वॉल स्ट्रीट जर्नल उनसे कुछ व्हाइट हाउस के ऑफिशियल्स ने बातचीत की है और उन्होंने कहा है जी कि हम स्लैश करेंगे ये जो टैरिफ्स है चाइना के जो इम्पोर्ट्स पे हमने लगाए थे 145% के, उनको शायद 50-65% पे लाया जा सकता है, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट्स को बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। आपको पता ही है कि अमेरिका के और भी बहुत बड़े जो बिजनेसमैन हैं वो चाइना के साथ डायरेक्ट बिजनेस करते हैं। यूएस ने 145 के टैरिफ्स इम्पोज किए थे क्योंकि वो कहते थे कि ये फेंटनॉल का जो सप्लाई चेन है इसको हम बंद करना चाहते हैं क्योंकि ये बहुत ही अनफेयर है। बीजिंग ने इसके जवाब में फिर 125% जो है यूएस गुड्स के ऊपर टैरिफ्स लगाए थे। आज चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री के जो स्पोक्स पर्सन है गुआओ ज़ियाकुन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजिंग में कहा कि चाइना जो है वो तो पहले से ही ये कहता रह रहा है कि ये ट्रेड वॉर जो है या जो टैरिफ की वॉर है इसमें कोई भी विनर्स नहीं है। इसके साथ साथ चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो है उन्होंने भी वार्न किया है कि ट्रेड वॉर्स जो है वो सबके इंटरेस्ट को खराब करती है और मल्टीलैटरल ट्रेडिंग सिस्टम को और इकोनॉमिक जो ऑर्डर है दुनिया का उसको खराब करती है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेट जो है उन्होंने एक क्लोज डोर मीटिंग की थी जेपी मॉर्गन चेस के साथ और उसके बाद से कुछ खबरें मीडिया में आई थी जिसमें कि कहा गया था कि शायद डी एस्केलेशन जो है आने वाले दिनों में देखा जा सकेगा, उसकी वजह से मार्केट्स को भी रिलीफ मिलेगा। तो ये हौले हौले चीजें जो हैं शायद और भी ठंडे होंगे आने वाले दिनों में। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस जो हैं उन्होंने वार्न किया है कि अगर रशिया और यूक्रेन ने आपस में बातचीत नहीं की और वॉर को नहीं रोका तो यूएस बिल्कुल वॉक अवे कर जाएगा इससे। आज वो बात कर रहे थे एनवॉयस से जो कि आए हुए थे कीव से और यूरोपियन यूनियन में और इसके मसले के ऊपर बात कर रहे थे। यूके के अंदर यूके ने अनाउंस किया है कि जी हम ये डाउनग्रेड कर रहे हैं टॉक्स जो है। इन्होंने वैंस ने कहा कि ये इशू जो है उनको हमने बहुत ही एक एक्सप्लिसिट दोनों को एक प्लान दिया था ताकि इस इशू को खत्म किया जा सके, लेकिन दोनों ही जो है लग रहा है कि मानने को इसके ऊपर तैयार नहीं है, तो अगर तो वो यस बोलेंगे तो ठीक है वरना देन वी विल वॉक अवे फ्रॉम द प्रोसेस। अकॉर्डिंग टू मीडिया रिपोर्ट्स ट्रंप जो है वो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुके हैं कि ये जो अनेक्स किया गया है क्रीमिया का एरिया ये अब रशिया का एरिया रहेगा और वो कहते हैं जी कि अगर वॉर को रोकना पड़े इसके साथ भी तो बिल्कुल ठीक है। वैंस ने कहा जी कि ये जो लैंड स्वॉप्स हैं ये डेफिनेटली पार्ट ऑफ द डील होंगे, लेकिन इनको अपना जो टेम्पररीली जो इन्होंने एक दूसरे के इलाकों पे कब्जा किया था वो वापस जाएंगे, लेकिन लग नहीं रहा ऐसे होने वाला है। यूके की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने कहा जी कि हम जो ये इनके ऊपर टॉक्स होल्ड किए हुए थे यूक्रेन और रशिया के वॉर पे हम इसको डाउनग्रेड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि निगोसिएशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गई है। ये पीस टॉक्स जो थे फॉरेन मिनिस्टर्स इसके ऊपर जो मिल रहे थे ये अब पोस्टपोन उन्होंने किया। फॉरेन मिनिस्ट्री के जो
फॉरेन सेक्रेटरी जो है यूके के डेविड लेमी का ऑफिस, उन्होंने आज ये सारे डिटेल्स दिए थे। ऑफिशियल लेवल टॉक्स जो है लेकिन उनके ऑफिस ने कहा कि वो कंटिन्यू रहेंगे। साथ साथ जो क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन है दिमित्री पेशकॉव, उन्होंने भी मीडिया को बताया कि ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि कोई भी जो है ये रिकंसिलिएटरी जो है पोजिशन ली जा सके इस मौके पर। यूएस के जो यूक्रेन एनवॉय हैं कीथ कैलॉग्स, वो तो एक्सपेक्टेड है आज इसको अटेंड करने के लिए जो है यूके में आने वाले थे, लेकिन जो है उनकी कोई बातचीत हुई दूसरे ऑफिशियल्स के साथ उसकी अभी डिटेल्स नहीं आए हैं। ट्रंप साहब जो है ट्रूथ सोशल पे आज वो बहुत भड़के हुए थे, उन्होंने आज कहा कि ये बिल्कुल वॉर रुक सकता था लेकिन जेलेंस्की जो है वो बिल्कुल रिफ्यूज कर रहा है कि वो क्रीमिया को छोड़ देगा और रशिया के पास रहने देगा। उसके जो इन्फ्लेमेटरी जो स्टेटमेंट्स हैं वो वॉर को सेटल करने के लिए बहुत मुश्किल पैदा कर रहे हैं, जिसका क्या मतलब है कि रशिया तो शायद रेडी है वॉर को रोकने के लिए लेकिन जेलेंस्की साहब जो है वो नहीं है। और आपको याद है कि ये मार्को रूबियो ने भी कुछ दिन पहले, अभी कोई एक डेढ़ महीना पहले ही कहा था कि हम देख लेंगे कि कौन कितना सीरियस है, तो अभी आपने देख लिया कि कौन कितना सीरियस है। जेलेंस्की साहब तो नहीं चाह रहे हैं शायद कि वॉर को रुके, लेकिन क्योंकि जाहिर है उसके खुद का तो कोई रिलेटिव शायद नहीं मर रहा है, जिनके मर रहे हैं उनको तकलीफ है, तो अब पॉलिटिशियंस जो है उनका क्या बोल सकते हैं आप। ईरान की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने आज बहुत ज्यादा कंडेम किया है जो यूएस ने सैंक्शंस लगाए हैं उनके फ्यूल नेटवर्क के ऊपर। उन्होंने कहा जी कि एक तरफ तो ईरान के साथ ये बातचीत करना चाह रहे हैं और थर्ड राउंड ऑफ न्यूक्लियर टॉक्स शुरू कर रहे हैं, दूसरी तरफ से ये हॉस्टाइल अप्रोच लिए हुए है। फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन जो है इस्माइल बगेरी, उन्होंने आज कहा है कि ये क्लियर कॉन्ट्रोडिक्शन है यूएस के डिमांड फॉर डायलॉग के लिए, ये इंडिकेट करता है अमेरिका का लैक ऑफ गुडविल और सीरियसनेस इन दिस रिगार्ड। ये बात उन्होंने उस वक्त की जब यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने इम्पोज किया सैंक्शंस ऑन इरानियन शिपिंग नेटवर्क, और उसके अंदर एक आदमी जिसका के नाम असदुल्ला इमाम जोमे है, उसको कहा जी कि ये नेटवर्क का ओनर है। ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेट ने कहा जी कि ये रिस्पॉन्सिबल है, ये सारा जो है ये नेटवर्क चला रहा है, इसकी शिपिंग जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वर्थ ऑफ इरानियन एलपीजी जो है और क्रूड ऑयल जो है वो फॉरेन मार्केट्स में बेचती है और ये एक्सपोर्ट कर रहा है और ये लेता है अमेरिका से भी लेता है ताकि यूएस के इसको सैंक्शन से ये बच सके, लेकिन ये जनरेट कर रहा है बहुत सारे रेवेन्यूज ईरान के लिए और बिल्कुल इनको हम अकाउंटेबल होल्ड करेंगे क्योंकि हमको मालूम है कि ये फंड जो है इरानियन रेजीम को जो दे रहे हैं तो वो एरिया को डिस्टेबलाइज कर रहा है। अब डिस्टेबलाइज तो कुछ और भी कोई कर रहे हैं लेकिन आपका तो भाईजान उनकी तरफ ध्यान ही नहीं है, तो अभी क्या करेंगे। स्ट्रांग अर्थक्वेक ऑफ 6.2 मैग्नीट्यूड जो है आज वो तुर्की के इस्तंबोल में आया और काफी स्ट्रांग था, इसने काफी शेक और रॉक किया सिटी को और ये 16 जो ये रीसेंट मंथ्स में रीसेंट ईयर्स में सबसे बड़ा इसको माना जा रहा है, ये जो है क्वेक इसको माना जा रहा है। इस इस्तांबुल के अंदर 16 मिलियन लोग रहते हैं लेकिन अभी तक कोई यहां पे डैमेज की या कोई डेथ की जो है वो नहीं मिली है खबर, और लेकिन लोगों को कहा गया था कि अपने घरों को और बिल्डिंग्स को इवैक्यूएट करो। ये जो है सिटी ये लोकेटेड है ऑन यूरोपियन एशियन शोर्स ऑफ बॉस्फोरस स्ट्रेट और इसका एपिसेंटर जो था सिलिवरी था जो कि 80 किलोमीटर वेस्ट ऑफ इस्तांबुल है। बहरहाल सब खैरियत है यहां पे। पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट महमूद अब्बास ने आज रमल्ला के अंदर अर्ज किया है हमास को कि फौरन इमीडिएटली जितने भी इजरायली हॉस्टेजेस हैं उनको बिल्कुल छोड़ दे, और उन्होंने कहा है जी कि आपकी इस वजह से, महमूद अब्बास ने कहा है कि आप फ्यूल कर रहे हैं ये इजरायल के अटैक्स जो है टेरिटरी के ऊपर, उन्होंने कहा जी कि ये आपका क्रिमिनल ऑक्यूपेशन एक्सक्यूज है जो आप कर रहे हैं, और नहीं उन्होंने कहा जी कि आप एक्सक्यूज दे रहे हैं इस क्रिमिनल ऑक्यूपेशन फोर्स को कि ये गाजा के अंदर क्राइम्स करे और इसका प्राइस जो है मैं और मेरे लोग पे कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच जो है उसने भी एक्यूज किया है इसराइल को ऑफ इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स ऑन सिविलियंस इन वॉर विद हेजबुल्ला, यानी कि ना सिर्फ गाजा में बल्कि लेबनान के अंदर भी ये कर रहे हैं, और उन्होंने कहा जी कि इनको इन्वेस्टिगेट किया जाना चाहिए इसराइल को फॉर वॉर क्राइम्स। गाजा के अंदर आज जो रेस्क्यूअर्स है उन्होंने तकरीबन 10 बॉडीज को रिकवर किया जिसके ऊपर जो मिली इनको जफा के स्कूल स्कूल पे जिसपे कि इन्होंने अटैक किया, जहां पे कि पैलेस्टीनियंस जो थे वो शेल्टर लिए हुए थे, इसमें से एक बच्चे की बॉडी तो इतने बुरे तरीके से जल गई थी कि वो तो रिकग्नाइज भी नहीं हो सकती थी, और भी दूसरे बच्चे बहुत गंभीर अंदाज में जले हुए और मरे हुए यहां पे लोग भी और बच्चे भी मिले। जर्मनी, फ्रांस और यूके ने इसके बीच में इसराइल को कहा है कि आप जो कुछ ये कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, लेकिन जो ह्यूमैनिटेरियन एड आप नहीं जाने दे रहे हो गाजा में वो बिल्कुल जो है वो गलत है। यानी ये नहीं उसको उनको कह रहे कि भाई भाईजान वॉर रोको, बस जो आप एड नहीं जाने दे रहे ये आप गलत कर रहे हो, तो भाई जो अटैक्स कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। बहरहाल सऊदी अरेबिया और ईरान जो है उसके बीच में जो है और डीप एनर्जी और कोऑपरेशन टाइज जो है वो अब रहेंगे और ये बढ़ावा देंगे डिफेंस टूरिज्म कल्चर को और स्ट्रेंथन करेंगे अपने दोनों इकोनॉमीज को। ये बातचीत जो है हुई सऊदी क्राउन प्रिंस एमबीएस और मोदी जी के बीच में जब ये जद्दा के अंदर मुलाकात इन्होंने किया। इसके अलावा सऊदी अरेबिया दो ऑयल रिफाइनरीज भी इंडिया के अंदर जो है वो सेटअप करेगा। दोनों ने कहा कि हमको इलाके से टेररिज्म और वायलेंट एक्सट्रीमिज्म खत्म करना है और जो भी स्टेट्स जो इनके अंदर इन्वॉल्व है उनको डिसमेंटल करना पड़ेगा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया जो है वो अपना इकोनॉमी फोर ईयर्स में जो है एक्सपैंड करना चाहता है अमिड यूएस टैरिफ, यानी कि नई मंडियां देखना चाहता है। सऊदी अरेबिया भी अपनी ऑयल इकोनॉमी से ऊपर उठना चाहता है क्योंकि उसको भी लग रहा है कि ऑयल प्राइसेस को सबड्यू किया जाएगा। कुछ डिटेल्स जो इनके बीच में बातें हुई हैं वो तो अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन ब्रॉडली जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया है वो यही है कि इनके बीच में कोलैबोरेशन रहेगा पेट्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, क्लाइमेट पॉलिसी और जो है इनको इकोनॉमीज को स्ट्रेंथन करने के लिए। एमबीएस ने 2019 में प्लेज किया था कि 100 बिलियन यूएस डॉलर्स वो इन्वेस्ट करेगा इंडिया के अंदर, उसमें से 10 बिलियन यूएस डॉलर्स जो है वो ऑलरेडी जो है वो मटेरियलाइज हो चुका है।
जनाब ये थी हमारी अब तक की खबरों का पार्ट वन और पाकिस्तान हिंदुस्तान इंटरटेनमेंट और स्पोर्ट्स की खबरें आपको एक ब्रेक के बाद करेंगे। आप ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। 416-620-1778 हमारा नंबर है और अगर आप कहीं ऐसी जगह गुजर रहे हैं जहां आपको रेडियो सही नहीं सुनाई दे रहा तो आप एक नंबर डायल कीजिए, या मेरी खूबसूरत आवाज सही नहीं सुनाई दे रही तो 6478724900 डायल कीजिए या हमारी वेबसाइट लॉगिन कीजिए eawaz.com। यहां आप रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं, इसके अलावा तमाम स्पॉन्सर्स के नंबर हमारी वेबसाइट eawaz.com पर मिल जाएंगे। यहां आपको न्यूज़पेपर इंग्लिश, उर्दू और अब पश्तो में भी जो है वो पढ़ने को मिल जाएगा, तो eawaz.com जरूर विजिट कीजिए। चलें जनाब कुछ स्पॉन्सर के पैगाम लेते हैं फिर न्यूज का बकिया हिस्सा।
यू आर लिस्निंग टू WTOR 770 AM जंगस्टाउन टोरंटो।
खाना हो तो आ जाओ शाहीन टिक्का और कबाब।
All your favorite dishes prepared to perfection at Shaheen Tikka and Kebab.
मुझे मजे दे चिकन टिक्के कबाब बिरयानी दाल तड़का,
लाहौरी स्टाइल नाश्ता, मजेदार कढ़ाई, माउथ वाटरिंग कबाब एंड सिजलिंग बारबेक्यू आइटम।
शाहीन टिक्का और कबाब
इन फ्लेमिंगटन मॉल।
वालिया ट्रैफिक लीगल सर्विसेज से जनाब आरएस वालिया।
केयरलेस ड्राइविंग,
स्पीडिंग या फिर एक्सीडेंट,
फेल टू रिमेन स्टॉप एट द सीन,
रेड लाइट्स या फिर सीट बेल्ट्स,
परमिट ड्राइव विदाउट इंश्योरेंस,
रेसिंग, स्टूडेंट ड्राइविंग या फिर कॉट व्हाइल यूजिंग फोन,
स्पीडिंग,
आरएस वालिया आपकी टिकट से निजात दिलवाएंगे और आपके पॉइंट्स भी सेव करेंगे। 9054542112
अकाल ट्रक एंड लूम।
ताड़े ट्रक बादशाह दी क्वालिटी सर्विस, रिपेयर, ऑयल चेंज, वॉश ते मेंटेनेंस। एक और खुशखबरी, नॉर्थ अमेरिकन, चाइनीज ते कोरियन नवे ते इस्तेमाल शुदा टायर्स विद फुल वारंटी।
अकाल ट्रक एंड लूम, 1776 मेयरसाइड ड्राइव, 905-565-1100
जी तो हम चलते हैं जनाब पाकिस्तान की खबरों की तरफ। आज पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बहुत ही हाई लेवल मीटिंग जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का, उसके लिए कहा है कि वो बुलाया जाए कल थर्सडे को, यानी कि उसके लिए उन्होंने सारे जितने भी जो हैं ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ, इंटेलिजेंस हेड्स, सीनियर कैबिनेट मेंबर्स, मिलिटरी लीडरशिप, टॉप सिविल जो है लीडरशिप, फेडरल मिनिस्टर्स, इन सबको कल बुलाया गया है, क्योंकि इंडिया की तरफ से जो बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल पैगाम दिए गए हैं आफ्टर पहलगाम अटैक, उस सिलसिले में ये बातचीत प्राइम मिनिस्टर करना चाहते हैं। इसके साथ साथ जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान का कोई कनेक्शन नहीं है इस अटैक के साथ, ये एक होम ग्रोन अटैक है और इंडिया की बहुत सारी स्टेट्स के अंदर रेवोल्यूशन आया हुआ है, नॉट वन और टू बल्कि एक डजन जो स्टेट्स हैं, नागालैंड टू कश्मीर और छत्तीसगढ़ टू मणिपुर, सब जो हैं इंडियन मोदी जी की इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ हैं और वो जो हैं इसलिए ये सारे जो हैं इंडिजिनस हैं सारे। इसके साथ साथ उन्होंने कहा जी कि जो इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को ना बोल दिया है, वो ना बोल ही नहीं सकते हैं, इस ट्रीटी से निकल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि दिस वॉज साइंड अंडर द अम्ब्रेला ऑफ वर्ल्ड बैंक, तो इसलिए पाकिस्तान के साथ अगर इन्होंने ऐसा कुछ भी किया तो उसका बिफिटिंग रिप्लाई दिया जाएगा। इसके साथ साथ फॉरन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन शफकत खान जो है, उन्होंने भी बोला कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल अफसोस करता है टूरिस्ट के लाइव जो लूज किए गए और कंडोलेंसेज अपना भेजता है, लेकिन इसमें पाकिस्तान का कुछ लेना देना नहीं है। आज पाकिस्तान का मीडिया जो है वो भी शायद जागा हुआ था, जिस तरह से कि इंडियन मीडिया जो है बहुत बैश कर रहा था पाकिस्तानी मीडिया को, पाकिस्तान को तो पाकिस्तानी मीडिया ने भी आज जरा थोड़ा सा जिगरा दिखाते हुए कंडेम सिर्फ इस अटैक को नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि इंडिया के जो एलिगेशन है वो बेसलेस है और उन्होंने एक्यूज किया कि ये रॉ की जो पॉइजनस प्रोपोगेंडा है और फैब्रिकेशन है और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, ये ऑर्केस्ट्रेट किया है सारा का सारा इंडियन गवर्नमेंट ने। आपको पता ही है कि एक दफा पहले भी समझौता ट्रेन का एक किस्सा हुआ था जिसमें अगेन विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, इसमें भी अभी तक इन्वेस्टिगेशन कोई नहीं हुई है, लेकिन गन्स जो है सारी पाकिस्तान की तरफ कर दी गई है, तो उसमें भी पता चला था बाद में वही हिम्मत करकरे जिसको कि या तो मारा या तो बेचारा मर गया उधर 26/11 को मुंबई में, तो उसने कहा था कि नहीं इसमें अपने खुद के जो इंडियन मिलिट्री के बंदे हैं वो इन्वॉल्व है, लेकिन इंडिया ने इमीडिएटली वो जो अटैक था उसका जो सारा मलबा पाकिस्तान पे डाला था। इसी तरह आपको पता है कि जो पुलवामा में और यूरी के अंदर भी जो कुछ हुआ था उसका फौरन मलबा पाकिस्तान में डाला, बाद से उनके बहुत सारे बाद में एक्सपर्ट्स ने कहा कि नहीं ऐसा लगता नहीं है कि उसका पक्ष, तो ये उनकी आदत है कि ये फौरन मक्की भी, पहले आपको पता ना वो कबूतर उड़ के चले जाते थे तो जी पाकिस्तान आप जासूसी कर रहे हैं, वो पतंगे उड़ के चले जाते हैं तो वो भी जी ये पतंग उन्होंने जो है उसके लिए, तो ये मतलब है उन्होंने भी जाहिर इलेक्शन जीतना है ना, तो अभी मुद्दा तो कोई उनके पास रह नहीं गया है, तो अब वो बस पाकिस्तान पाकिस्तान करते फिरते हैं, तो उसके लिए आज पाकिस्तान मीडिया ने कहा कि ये रॉ का सारा है और इसको ऑर्केस्ट्रेट किया है इंडियन गवर्नमेंट ने। JUIF के जो चीफ है मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अपने पार्टी मजलिस शूरा के साथ मीटिंग करने के बाद इन लाहौर, और उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल कोई फॉर्मल अपोजिशन अलायंस बनाने को तैयार नहीं है, लेकिन हम फिर भी दूसरे पार्टीज के साथ कोऑपरेशन जरूर करेंगे। आपको पता ही है कि JUIF और PTI के बीच में बहुत दिनों से बातचीत चल रहा था कि एक अलायंस बनाना चाहिए गवर्नमेंट के अगेंस्ट, लेकिन इनके बीच में रिफ्ट बढ़ गया जब PTI के आजम सवाती ने यह कहा कि इमरान खान साहब ने उनको बोला है कि वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करें। JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तजा ने कहा कि यह बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है कि एक तरफ आप हमारे साथ अलायंस बनाने का बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप बिल्कुल छुप के और ढक के जो है एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी बात कर रहे हैं। उन्होंने बहुत क्रिटिसाइज किया PTI की लीडरशिप को कि वो इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन नहीं दे पाए हैं, तो उन्होंने कहा जी कि हम इसलिए यूनिलैटरल अगर आप टॉक्स होल्ड कर रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ तो फिर हमारा आपके साथ अलायंस पॉसिबल नहीं है। मौलाना ने भी आज कहा कि जो पार्टी की शूरा है उसने ये डिसाइड किया है कि हम फॉर्मल अलायंस किसी के साथ नहीं बनाएंगे और अपना पॉलिटिकल स्ट्रगल इंडिपेंडेंटली अपने खुद के प्लेटफॉर्म से ही रन करेंगे। पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं अजमा बुखारी, उन्होंने एक्यूज किया है PPP को कि वो जो कनाल्स का डिस्प्यूट है उसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं और मिस इन्फॉर्मेशन लोगों में फैला रहे हैं। उन्होंने कहा जी कि PPP जो है वो रूल कर रही है सिंध को 16 ईयर से, अभी तक तो उन्होंने कुछ डिलीवर नहीं किया है और लेकिन इसके बावजूद भी वो जो है डिस्टॉर्ट करते रहते हैं फैक्ट्स को, तो उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। और टॉक्स जो है वो नहीं हो सकते जब आप थ्रेट्स देते रहते हैं, तो थ्रेट के माहौल में ये नहीं नहीं रहता। इनके बीच में थोड़ी बहुत आपको पता ही है, पिछले दिनों से कुछ आइस तो पिघली थी पीपीपी और पीएमएलएन के बीच में, जब नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि भाई बातचीत करें आप, और ये भी खबर आई थी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो है वो जरदारी और बिलावल के साथ बात करेंगे। तो उसके अलावा जो राणा सनाउल्ला थे वो भी बात कर रहे थे फोन के ऊपर सिंध के सीनियर मिनिस्टर शर्जील मेमन के साथ, और इन्होंने कहा था कि हम बिल्कुल इस मसले को रिजॉल्व करेंगे और पाकिस्तान और पंजाब एक बूंद भी सिंध के पानी का नहीं लेगा। तो अभी ये इनके बीच में बात चल ही रही थी। तो कल भी हमने आपको बताया था कि जो मोर्चे बहुत सारे निकले हुए हैं, स्टूडेंट्स ने और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज ने और लॉयर्स भी इसमें शामिल हुए थे, तो आज फेडरल गवर्नमेंट ने लॉयर्स को सिंध में बोला है कि हम आपके साथ बात करने को तैयार है, जबकि पीपीपी ने अनाउंस किया है कि अप्रैल 25 को जो है वो जो ये लॉयर्स हैं इनके साथ एक सॉलिडेरिटी में गैदरिंग करेंगे। तो भाईजान आपके तो जरदारी साहब ने खुद ही पहले ये सारी बातें मानी थी और अभी आप फिर उससे पीछे हट रहे हो, तो अभी पता नहीं अब क्या है। फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब साहब जो है उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान कमिटेड है फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ, और ये एक हाई लेवल सीरीज ऑफ मीटिंग्स जो है डीसी के अंदर अटेंड कर रहे हैं, और यहां पे ही वो स्पीकिंग एट एनुअल स्प्रिंग मीट ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक, और उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के अंदर हौले हौले इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, हमने रिफॉर्म्स किए हैं और अब पाकिस्तान में बहुत सारा इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी है। ये चेयर कर रहे थे सेकेंड G24 फॉरेन मिनिस्टर फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का एक समिट, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा रिजिलियंस है, हमारा रोबस्ट बैंकिंग सिस्टम है, और जो चैलेंजेस है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स और प्रोटेक्शनिज्म के रहते हुए उसको हम हेड ऑन ले रहे हैं। आईएमएफ ने एक पैनल होस्ट किया था जिसका के डिस्कशन था मोबिलाइजेशन इन मीडियम टर्म के ऊपर, तो उसके ऊपर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है बहुत ही अपना टैक्स बेस अब ब्रॉडन कर रहा है और इंश्योर कर रहा है कि एग्रीकल्चर रियल एस्टेट रिटेल जो है वो भी जीडीपी के अंदर अपना हिस्सा डाले, यानी कि टैक्सेस अपने हिस्से के दे। उसके बाद एक बहुत ही जो फायर साइड चैट है अटलांटिक काउंसिल इकोनॉमिक जियो इकोनॉमिक सेंटर की, उसके अंदर भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया और बहुत टफ इनको क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा जी कि अपॉर्चुनिटीज है पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सेक्टर्स में। आज जो है मेरी भी बात हुई जो ऑन्टेरियो के मिनिस्टर हैं स्टीफन लेचे उनसे, और मैंने उनसे यही पूछा कि पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ा जो है मिनरल्स का एक सेमिनार हुआ था, इन्वेस्टमेंट एक अपॉर्चुनिटी थी, तो क्या कनाडा का कोई डेलीगेशन था? तो उन्होंने कहा कि वो खुद तो नहीं जा सके हैं लेकिन शायद कहीं ना कहीं कुछ रिप्रेजेंटेशन कनाडा की थी, और वो बिल्कुल पाकिस्तान के साथ जो क्रिटिकल मिनरल्स का जो प्लेटफॉर्म है उसको आगे लेके जाना चाहते हैं, विच इज अ वेरी गुड स्टेप। पंजाब की गवर्नमेंट जो है जी वो अब कह रही है कि जेनेटिकली टेस्टिंग होएगी स्टूडेंट्स की जो कि एडमिशन लेंगे स्कूल्स और कॉलेजेस में फॉर थैलेसीमिया और दूसरे जो डिजीजेज हैं, और ये मैंडेटरी रहेगा, और इसमें अंडर विच इज द इनिशिएटिव इज पार्ट ऑफ थैलेसीमिया प्रिवेंशन एक्ट 2025 जो कि अभी पास किया गया था पार्लियामेंट्री असेंबली के अंदर। ये बीटा थैलेसीमिया जो है मोस्ट कॉमन जेनेटिक डिसऑर्डर है कंट्री में, एंड एवरी सिक्स पीपल आउट ऑफ 100 कैरी दिस म्यूटेंट जीन, और आपको पता ही है कि टोटल जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान का 220 मिलियन है, तो 13.2 मिलियन जो है वो हेल्दी इसके कैरियर्स है। तो लेकिन फिर भी ये जो हेरिडेटरी डिजीजेस है इनको डिटेक्ट करना और इनके बारे में अवेयरनेस होना, क्योंकि ये कभी भी भड़क सकती है, जैसे कि डोरमेंट वॉल्केनो होता है ना, और लेकिन वो कभी भी भड़क जा सकता है, तो ऐसे ही ये भी कभी भड़क सकती हैं बीमारियां, तो उनके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर ये है तो इसको कैसे फिर डील किया जा सकता है। और आमिर साहब के पसंद की खबर जो है आंडों के ऊपर हम बताने लगे हैं। पाकिस्तान की फैसलाबाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर है, उसने इंट्रोड्यूस किया है न्यू चिकन ब्रीड जो प्रोड्यूस कर सकती है 200 एग्स पर ईयर, ट्रिपल द आउटपुट ऑफ ट्रेडिशनल इंडिजिनस हेंस। जो इंडिजिनस हेंस हैं वो इतने अंडे नहीं दे सकती हैं। दिस इनिशिएटिव इज बैक्ड बाय पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड, और इसमें वो कहते हैं जी कि जो पोल्ट्री फीड जो हम इम्पोर्ट करते हैं उसके ऊपर हमारा रिलायंस बहुत कम हो जाएगा। यूएएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल साइंसेज यूनी गोल्ड जो है वो कहते हैं जी हमने ये जो सिस्टम किया है ये बिल्कुल लो टू मीडियम इनपुट सिस्टम्स में काम कर सकता है, इसके लिए लो फीडर लोड चाहिए और ये बहुत ज्यादा हीट स्ट्रेस जो है वो भी ले, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में पंजाब में काफी गर्मी पड़ता है। तो उन्होंने कहा जी कि हमने ये टू डिस्टिंक्ट स्ट्रेन आर्म्स फुल नेक और नेकेड नेक के ऊपर ये किए हैं, और इसमें हमने रूरल कंडीशंस और अपना क्लाइमेट और फीडिंग कंडीशन सबको ध्यान में रखते हुए किया। यूनिगोल्ड हेंस जो है वो अब प्रोड्यूस करेंगे 179 to 200 एग्स पर ईयर। इसमें हर अंडे का वेट जो है वो 52 ग्राम्स रहेगा, 25% मोर देन द इंडिजिनस काउंटर, यानी कि जो देसी अंडे हैं उनसे ये बड़े होंगे, ठीक है जी। और इनका जो मेच्योरिटी टाइम होगा वो भी 25 टू 26 वीक्स रहेगा। तो ये जनाब बड़ी अच्छी अंडों की एक खबर है। टू लेवीज जो हैं उनको आज मार दिया गया है जब एक अननोन असेलेंट जो है उन्होंने ओपन किया फायर ऑन सिक्योरिटी डिटेल ऑफ पोलियो टीम इन मस्तंग का जो काली तेरी एरिया था बलूचिस्तान का। विक्टिम्स जो थे दे वर डिप्लॉयड टू प्रोटेक्ट द एंटी पोलियो वर्कर्स जो कि वैक्सीनेशन कर रहे थे। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस टेररिस्ट अटैक को बहुत ज्यादा कंडेम किया है और कहा है कि परपेट्रेटर्स को सजा दी जाएगी। उन्होंने कहा जी ये सब टेररिस्ट जो है ह्यूमैनिटी के दुश्मन है, इनको पनिश किया जाएगा। ये पाकिस्तान का जो रिजॉल्व है टू इरेडिकेट पोलियो फ्रॉम द कंट्री उससे हमको पीछे नहीं हटा सकता है, हम बिल्कुल स्टेडफास्ट रहेंगे और ये जो है कैंपेन पूरे फुल रिजॉल्व के साथ आगे लेके जाई जाएगी। पेरेंट्स को बिल्कुल डिसहार्टन होने का जरूरत नहीं है, उनके बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स मिलेंगे। न्यू पोलियो के कुछ केसेस जो है वो केपी के तोरघर जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे सामने आ रहे हैं, यानी कि जो दुनिया में अब सिर्फ दो कंट्रीज रह गए हैं जिसमें पोलियो है, वो एक पाकिस्तान है और एक अफगानिस्तान है। तो आप जरा हालत देख लें कि हम किधर खड़े हैं। न्यूक्लियर पावर है हम और हम गोली मार देते हैं जो बेचारा हमारा हेल्थ वर्कर हमारे बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स देने जाता है ताकि वो जिंदगी में लंगड़ा के ना चले। बस ये जुर्म है जी गवर्नमेंट का। वाह जी वाह, क्या बात है, क्या आपके ख्यालात हैं और कैसे लोग हैं। हिंदुस्तान के अंदर सोर्सेज इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट जो है उन्होंने कहा जी कि पहलगाम का टेरर अटैक जो है वो चार टेररिस्टों ने किया है जिसके के अंदर दो कश्मीरी थे जिनको ट्रेन किया गया था पाकिस्तान में। और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि अलेजली दे वर ट्रेन है, मतलब डायरेक्टली बोल दिया कि नहीं पाकिस्तान में यही ये ट्रेन हुए हैं। मोदी जी जो है उन्होंने आज चेयर किया है कैबिनेट का मीटिंग ऑन सिक्योरिटी, इसमें होम मिनिस्टर अमित शाह और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर मौजूद थे। शाह साहब जो थे मोदी जी के घर पे आए थे और इसके साथ साथ इन्होंने इस मीटिंग के अंदर फैसला किया है कि बहुत सारे फैसले पाकिस्तान के खिलाफ हमको लेने पड़ेंगे। उसमें सबसे बड़ा फैसला तो यही है जो भी अभी हमने आपको बताया कि उन्होंने सस्पेंड कर दिया है इंडस वाटर ट्रीटी विद पाकिस्तान। और इस मीटिंग में से बाहर आने के बाद फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिश्री जो हैं उन्होंने कहा है कि हम बहुत ज्यादा कंडेम करते हैं इस अटैक को इन स्ट्रांगेस्ट टर्म्स और हम को जो दुनिया के सारे लीडर से इसके लिए सपोर्ट आ रहा है उसको हम एक्नॉलेज करते हैं और शुक्रिया बोलते हैं। इसके इंडस वाटर के साथ साथ इंडिया जो है वो क्लोज कर रहा है अटारी वाघा बॉर्डर को विद इमीडिएट इफेक्ट। इसके अलावा कोई भी पाकिस्तानी जो है उसको परमिट नहीं किया जाएगा कि वो इंडिया की यात्रा कर सकता है अंडर सार्क वीजा एग्जम्पशन स्कीम। इसके अलावा भी तमाम वीजे जो है पाकिस्तानियों को कैंसिल किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ तमाम डिफेंस नेवी एयरफोर्स एडवाइजर्स जो है एट पाकिस्तान हाई कमीशन इन दिल्ली उनको इमीडिएटली हम परसोना नॉन ग्रेटा बोल रहे हैं, यानी कि वो नापसंदीदा शख्स उनको वो बोल रहे हैं और उनको बोला है कि इमीडिएटली वो जो है इंडिया से निकल जाए। इसके साथ साथ हिंदुस्तान भी विड्रॉ करेगा अपने एडवाइजर्स को फ्रॉम पाकिस्तान। फ्रॉम 1st of May पाकिस्तान हाई कमीशन पोस्ट जो है उसको रिड्यूस किया जाएगा। 55 वहां पे बंदे थे उसमें 30 बंदे अब रहेंगे, बाकी सब वापस जाएंगे। अनंतनाग पुलिस जो है उसने इसके अलावा 20 लाख कैश बोला है कि कोई भी अगर हमको टेररिस्टों के बारे में बोलेगा तो हम उसको ये पैसे देंगे। उन्होंने आज इंडिया ने कहा कि रेजिस्टेंस फ्रंट जो कि ऑफशूट है लश्कर ए तैयबा की उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है और ये बैड न्यूज है पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर के लिए जिनके कुछ दिन पहले बहुत ही प्रोवोकेटिव रिमार्क्स आए थे एट ओवरसीज पाकिस्तानी कॉन्फ्रेंस इन इस्लामाबाद। उन्होंने कहा था कि कश्मीर हमारा जुगलर वेन यानी कि हमारी शह रग है और दुनिया का कोई भी ताकत उसको हमसे अलहदा नहीं कर सकती है। तो बस उन भाईजान भी बदबख्ती आएगी है जी, की कर सकते हैं आसिम। राहुल गांधी जी जो है उनके ऊपर आज बीजेपी ने बहुत ज्यादा एतराज किया है क्योंकि वो यूएस में है और वहां पे उन्होंने बोला कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है और कुछ सिस्टम के साथ खराबी है। बीजेपी ने उसको कहा कि तुमने इंसल्ट किया है हिंदुस्तान को फॉरेन सॉइल पे। इन्होंने इंडियन डायस्पोरा से बॉस्टन के अंदर बात करते हुए कहा कि महाराष्ट्र का जो असेंबली इलेक्शन हुआ था उसमें ईसीआई के डेटा के मुताबिक यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक लोग जो थे वो कैसे वोट कर रहे थे, ऐसे कि वोटिंग जो थे वो कर रहे थे 5:30 पीएम से और उसके बाद 5:30 पीएम से 7:30 पीएम तक, जिसमें कि 6.5 मिलियन लोगों ने वोट दिया। वो कहते हैं जी ये फिजिकली इम्पॉसिबल है, क्योंकि एटलीस्ट एक वोटर को 3 मिनट तो लगता है वोट देने के लिए। अगर आप मैथ्स करेंगे तो इसका मतलब है कि ये जो लाइनें थे ये रात के 2 बजे तक लगे हुए थे, और ऐसा बिल्कुल नहीं था। वोटिंग टाइम तो आपको पता ही है ना, 6, 7, 8 बजे होता है, खत्म हो जाता है। तो वो कहते हैं इसलिए जो है, फिर हमने, वो कहते हैं जी हमने वीडियोग्राफी मांगी बीजेपी की गवर्नमेंट से कि हमको 2 महाराष्ट्र के इलेक्शन के ऊपर, उन्होंने वो नहीं दी, तो मुझे लगता है कुछ तो गलत है। बीजेपी के स्पोक्स पर्सन संबित बत्रा ने कहा जी कि गांधी जी जो है वो अपना गुस्सा, जो ईडी ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है इन नेशनल हेराल्ड केस उनके और उनके मां के लिए, उसके ऊपर ये अपना गुस्सा यहां पे निकाल रहे हैं, लेकिन इन चीजों से कुछ भी नहीं होएगा। ईडी और दूसरे एजेंसीज जो हैं वो बिल्कुल आपको स्पेयर नहीं करेंगे, क्योंकि वो फैक्ट्स पे काम करते हैं। आप और आपकी मदर सोनिया जो है वो पकड़े गए हैं इन प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, और आप दोनों को जेल में भेजा जाएगा। आप गद्दार हो, उन्होंने यहां पर तक बोला, उन्होंने कहा यू आर अ ट्रेटर, और आपने इंसल्ट किया इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी को ऑन फॉरन लैंड, और आप दोनों ने करोड़ों रुपए जो है वो एम्बेजल किए हैं, तो उसके लिए आपको जेल भेजा जाएगा। तो जनाब आग है बराबर दोनों तरफ लगी हुई, और जनाब जब ये अब सियापा हो गया है तो अब उसकी वजह से क्या कर सकते हैं। अब कोई ना कोई तो शैतान ये करता ही है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में अच्छे हालात ना रहे। अब ये तो मेचोरिटी जरा लीडरशिप को दिखानी पड़ेगी कि भाई कम वट में हमको तो अपना नहीं करना है खराब, लेकिन अभी क्या करेंगे, दोनों तरफ पे इलेक्शन लड़ना है ना लोगों ने। अभी जो अपकमिंग फिल्म है अबीर गुलाल, जिसमें मैं आपको बता रही थी कि फवाद खान को बहुत ही 13 साल के बाद फिर से एक इंडियन फिल्म में वाणी कपूर के साथ देखा जाएगा। वैसे तो शुरू से इसमें कंट्रोवर्सीज आ रहे थे जब से इसका टीजर April 1st को आया था और हमने आपको डिटेल्स दिए थे, लेकिन अब तो ये इंटेंसिफाई हो गया है अटैक्स जो है पहलगाम अटैक के बाद। अशोक पंडित जो कि प्रेसिडेंट हैं इंडियन फिल्म एंड टीवी डायरेक्टर्स एसोसिएशन के, उन्होंने कहा जी कि ये अटैक जो है इट्स एन एक्ट ऑफ वॉर अगेंस्ट द इंडियन नेशन, और ये पहली बार नहीं हुआ है, ये पिछले 30 साल में बहुत बार हुआ है। हमने बहुत ज्यादा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया है सारे फिल्म इंडस्ट्री को कि पाकिस्तान के साथ काम मत करो, क्योंकि नेशन कम्स फर्स्ट। अगर उनकी फैमिली का कोई बंदा मारा जाता टेररिस्टों के हाथों तो फिर तो वो बिल्कुल फवाद के साथ काम नहीं करते। अभी उनके खुद के फैमिली का कोई आदमी नहीं मरा है तो वो फवाद के साथ काम कर रहे हैं। वैसे भी इंडियंस जो लंदन और दुबई जाते हैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ परफॉर्म करने के लिए, और क्रिकेट के अंदर भी, ये भी फौरन रोकना चाहिए, इनको बोल देना चाहिए कि हम बिल्कुल कुछ क्रिकेट नहीं खेलेंगे आपके साथ, आप गन से हम लोगों को मार रहे हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि पब्लिक जो है वो बहुत एंग्री है आपके साथ, और आप जो क्रिकेटर्स और आर्टिस्ट और सिंगर कभी बाहर बाजार में निकलोगे तो लोग आपको पकड़ के पीटेंगे। उन्होंने कहा जी कि बिल्कुल हम ये एक ऑर्डर अभी लाने वाले हैं कि जो भी कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करेगा उसको बॉयकॉट इंडस्ट्री में किया जाएगा। तो जनाब ये भड़काऊ बयान कहां लेके जाएंगे आपको, ठीक है जी। रोहित शेट्टी साहब जो है उन्होंने आज कंफर्म किया है कि रणवीर सिंह स्टारर सिम्बा जो है उसका एक सीक्वल बनाया जाएगा, और इसके साथ साथ अक्षय कुमार का जो सूर्यवंशी आया था उसका भी Part 2 जल्द बनाया जाएगा। उन्होंने कहा जी कि इसके लिए बहुत सारे एक्टर्स चाहिए होंगे जो इन फिल्मों को ज्वाइन करेंगे, और उन्होंने कहा कि मेरा वैसे तो कोई प्लान नहीं था कि मैं एक पॉप यूनिवर्स इनिशियली क्रिएट करता, लेकिन जब मैंने सिंगम बनाया 2012 में तो मुझे मालूम नहीं था कि ये फिल्म इतना बिग ब्रांड बन जाएगा, तो फिर उसके बाद मुझे आइडिया आया कि पॉप फिल्म्स जो है उनको बनाना चाहिए, और तभी हमने स्क्रिप्टिंग किया था सिम्बा के लिए, और इवेंचुअली इट लेड टू अक्षय कुमार सूर्यवंशी, तो अभी हम इस पॉप यूनिवर्स को एक्सपैंड करेंगे। यामी गौतम और इमरान हाशमी का जो कोर्टरूम ड्रामा है विच इज इंस्पायर्ड बाय द लैंडमार्क 1985 शाबानो वर्सेस अहमद खान केस, उसमें ये दोनों नजर आएंगे। यामी जो है वो शाबानो बनेगी, इमरान उसका एक्स हस्बैंड अहमद खान बनेगा। अब इनकी जो शूटिंग है फिल्म की वो रैप अप हो गई है। इट्स द सेकेंड इंस्टॉलमेंट इन फिल्म मेकर सुपर्णा वर्मा का जो कोर्टरूम ट्रिलोजी है, पहला जो था वो मनोज बाजपेयी का सिर्फ एक बंदा काफी है जो 2003 में आया था वो था, और ये अब Part 2 रहेगा। ये 40th एनिवर्सरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट है इस केस के अंदर, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये राइट दिया था मुस्लिम वुमेन को कि वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं आफ्टर डिवोर्स। तो ये काफी आइकॉनिक केस था इंडिया की हिस्ट्री में। और जनाब आज PSL 10 के अंदर मैच था मुल्तान सुल्तान वर्सेज इस्लामाबाद यूनाइटेड, और उन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपना जो है वो विनिंग स्ट्रीक जो है वो रखा कंटिन्यू और सुल्तान्स को हराया। ये मैच था आज एट मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम, 13th मैच था ये। सुल्तान्स ने टॉस विन किया था और ऑप्ट किया था बैटिंग के लिए और बनाए थे 168 फॉर 5। इस्लामाबाद ने जवाब में 171 फॉर 3 बनाए विद 17 बॉल्स टू स्पेयर। शादाब ने लेकिन आज जो है बनाया एक नया रिकॉर्ड, ही बिकेम द फर्स्ट स्पिनर टू टेक 100 विकेट्स इन पीएसएल। इसके साथ ही इस्लामाबाद जो है अब टॉप ऑफ द टेबल पे है विद 10 पॉइंट्स। उसके 5 मैच जो उसने खेले, 5 जीते हैं। एक दिन पहले राजस्थान रॉयल्स जो है, जो आईपीएल का टीम है, उसके ऊपर बहुत सारा एक्यूजेशन आया था कि वो मैच फिक्सिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। इसके ऊपर फॉर्मर पाकिस्तान क्रिकेटर तनवीर अहमद ने भी बहुत बड़े अब खुलासे कर दिए हैं। उसने कहा जी कि मोस्ट ऑफ द टीम्स जो आईपीएल के अंदर खेलती है, दे बिलोंग टू फिक्सर्स। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है भाई। एक्स के ऊपर उन्होंने कहा कि बीसीसीआई जो है वो बताती है कि आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, लेकिन वो ये नहीं बताती है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी फिक्सिंग भी करते हैं, यहां पे ही होती है। राजस्थान रॉयल्स जो है उसको एक्यूज किया गया था कि उसने मैच फिक्सिंग किया था बाय कन्वीनर ऑफ एडहॉक कमेटी ऑफ राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन, और उसका नाम था जयदेव बिहानी। और ये एलिगेशन उस वक्त आए जब 2 रन के लॉस से जो है ये 2 रन के लॉस से ये हार गए थे अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट्स। राजस्थान रॉयल्स ने जाहिर है कि इसको डिनाई एक्यूजेशंस को किया था और उन्होंने कहा था कि ये कंप्लीटली फॉल्स और बेसलेस है और डिमांड किया था एक्शन अगेंस्ट बिहानी। बीसीसीआई ने भी ये कहा था कि आरसीए जो है उसको हमने अभी डिसॉल्व कर दिया है, एडहॉक कमेटी जो है वो फॉर्म किया है, हमारा जो एंटी करप्शन यूनिट है यानी कि बीसीसीआई का, वो 24/7 काम करता है और ये जितने भी एलिगेशन लगाए हैं उसके अंदर कोई भी ट्रूथ नहीं है। राइट आर्म पेसर ब्लेसिंग मुजरा बानी जो है उसने ब्रिलियंट जो फिगर्स थे उसकी वजह से 9/122 जो इन्होंने लिया तो बनाया सेकेंड इनिंग्स में जिम्बाब्वे ने, जिसकी के वजह से और ब्रायन बेनेट का जो हाफ सेंचुरी था उन्होंने हेल्प किया जिम्बाब्वे को टू एंड दिस ड्राउट ऑफ 3 विकेट विन ओवर बांग्लादेश इन द फर्स्ट टेस्ट ऑफ 2 मैच सीरीज एट सिलेट क्रिकेट स्टेडियम। और ये विन जो है इनकी पहली है इन अवे टेस्ट सीरीज सिंस 2018। ब्लेसिंग्स जो है उन्होंने 6 विकेट्स लिए थे 72 रन्स पे इन 20.2 ओवर्स। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज इज अबाउट मुल्तान सुल्तान्स कैप्टन मोहम्मद रिजवान, जिन्होंने जिनसे पूछा गया कि भाई आप विकेट कीपिंग से क्यों हट गए हैं, पीएसएल 10 के अंदर आप नजर नहीं आ रहे हैं। ये जो पोस्ट मैच कॉन्वर्सेशन हो रहा था इनका रमीज राजा के साथ, जब ये गेम इनका खत्म हुआ लाहौर कलंदर से, तो उन्होंने कहा कि ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है और मैं जो था फील्ड में रहना चाहता था ताकि मैं फील्डर्स के करीब रह सकता और उनके साथ डायरेक्टली बात कर सकता और उनके एनर्जी लेवल को लिफ्ट कर सकता। उन्होंने कहा जी कि टीम का बॉलिंग यूनिट जो है हमारा अभी रिलेटिवली न्यू है और जो प्रोफेशनल क्रिकेट टीम जो है उसके लेवल पे अभी नहीं खेल सकते हैं और इसीलिए पीएसएल का जो हाई प्रेशर लेवल रहता है उसको नहीं ले सकते हैं, लेकिन आने वाले दिनों में ये लेंगे।
जनाब जैसा कि पीएसएल ने बताया कि आज मुल्तान सुल्तान और इस्लामाबाद का मैच था, मुल्तान सुल्तान जो है वो हार गए। कल मैच खेला जाएगा लाहौर कलंदर और पिशावर जलमी के दरमियान, तो देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान क्या होते हैं। पॉइंट टेबल की तरफ चलते हैं पीएसएल की, तो इस्लामाबाद जैसे भी इन्होंने बताया न्यूज में आपको कि टॉप पर हैं, 5 मैचेस जीते हैं, 5 खेले और 5 ही मैच इन्होंने जो है वो जीते भी हैं। और इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात बताऊं कि लास्ट जो पीएसएल था 9th एडिशन उसमें भी उन्होंने लास्ट 5 मैचेस जो है वो जीते थे, टोटल उनके अब तक 10 मैचेस हो गए और वो 10 मैचेस खेल के 10 के 10 उन्होंने जीते, क्योंकि वो फाइनल डिफेंडिंग चैंपियन भी है। तो लास्ट 5 उनके और ये 5 10 मैचेस विदाउट एनी डिफीट। तो अभी ये टॉप पर कर रहे हैं, कराची किंग पहुंच गए हैं नंबर 2 पे। आई डोंट नो, ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि 2 पर कैसे आ गए। तो 5 मैचेस खेले, 3 मैचेस इन्होंने जीते हैं और 2 मैच इन्होंने जो है वो लॉस किया। लाहौर कलंदर तीसरे नंबर पर 4 मैचेस खेले हैं, 2 मैचेस इन्होंने विन किए और 2 मैचेस लाहौर ने लूज किए हैं। पिशावर जलमी सबकी फेवरेट, बहुत ही फैन फॉलोइंग है पिशावर जलमी की, उनके जो हैं वो 4 मैचेस जो हैं उन्होंने टोटल खेले हैं उसमें से 1 ही जीता है और 3 मैचेस हार कर चौथे नंबर पर हैं। क्वेटा नंबर 5 पर 3 मैचेस खेलकर 1 जीता है और 2 हारे। او ملتان سلطان مجھے کر رہا ہے کہ وہ لرن کرنے کے چکر میں جو ہے وہ لرننگ اسٹیج ان کی ختم نہیں ہو رہی ہے. پانچ میچز کھیلے ہیں, ایک میچ جیتا ہے اور چار میچز لوز کر گئے ہیں اور آخری پائدان پر ہیں. اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی رن ریٹ
جا سکیں گے,
رن ریٹ کتنا اوپر نیچے ہوگا, کس کا ہوگا, کیا ہوگا, لیکن اب تک بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ملتان سلطان کا سفر,
کیونکہ چار ٹیمیں ہیں نا تو اوپر کی چار ٹیمیں اگر اور,
ہاں لیکن سم ٹائم ابھی کیونکہ میچز ہیں تو دیکھتے ہیں, لیکن کیونکہ اتنے باٹم پر آ کے دو پوائنٹ کے ساتھ, کیونکہ پشاور زلمی, کوئٹہ اور ملتان, ان تینوں میں سے کوئی ایک مطلب اوپر چلا جائے گا, مطلب ایسے لے لیں کہ ان میں سے کوئی مقابلہ کر کے جو ہے وہ پوزیشن اپنی بہتر کر لے, لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. رومانچک جو ہے وہ
اسٹیج پہ آ گئے,
اسٹیج پہ آ گئے پی ایس ایل بھی, تو یہ خبریں آپ کو ایسے ہی ملتی رہیں گی. ٹاپ آف دی آور کا بریک لے لیتے ہیں اور پھر پروگرام میں واپس آتے ہیں. آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اب جناب بالکل 7 بجے کے بعد, ابھی ٹاپ آف دی آور کے بعد ہمیں کال کر سکتے ہیں. 416-620-1778 ہمارا نمبر ہے. جو لوگ ہمیں سن رہے تھے ظاہر ہے نیوز کے دوران کالز آ رہی تھیں, لیکن سر بہت معذرت, نیوز کے درمیان کال نہیں لے سکا میں, اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ ابھی ٹاپ آف دی آور کے بعد کالز کریں گے تو ہم ضرور آپ کی کال جو ہے وہ آن ایئر کریں گے. نیوز کے درمیان میرے لیے بہت مشکل تھا, آپ نے کہا کہ نہیں ابھی لے لیں ابھی لے لیں, تو سر بہت معذرت چاہتا ہوں. آپ ہمارے لیے پیار ہیں, آپ سنتے ہیں دیکھتے ہیں, تو آپ لوگوں کا پیار ایسے ہی بنا رہے. آپ ابھی ٹاپ آف دی آور کے بعد کال کریں, میں ضرور اس کو آن ایئر کروں گا. ہمارا نمبر 416-620-1778.
یو آر لسننگ ٹو WTOR 770 AM یانگسٹاؤن ٹورانٹو.
اپنے پیاروں کو پیسے بھیجیں لیمپ فائی کے ذریعے, پیسے پہنچے منٹوں میں, وہ بھی آسان اور محفوظ طریقے سے, گڈ ایکسچینج ریٹ کے ساتھ. $150 بھیجنے پر $0 فیس. اس کے علاوہ اگر آپ $100 سے زیادہ بھیجیں تو سائن اپ کرتے وقت ریفر کوڈ E10 استعمال کریں اور اپنی پہلی ٹرانزیکشن پر 10% کیش بیک حاصل کریں, یعنی $500 بھیجنے پر $50 کیش بیک کی صورت میں آپ کے اکاؤنٹ میں واپس. لیمپ فائی کی 10% کیش بیک آفر کے لیے آج ہی لیمپ فائی کی فری ایپ اپنے فون میں ڈاؤن لوڈ کریں. وزٹ lampfi.com فار ٹرمز اینڈ کنڈیشنز.
ٹرکنگ والے ویرو دھیان نال سنو, ٹرک جدہ بھی چلانے ہو مینوئل جا آٹومیٹک, کوئک ٹرک لیوب چیتے آہی نہ رکھیو, ٹرک دی بڑھیا سروس لئی کوئک ٹرک لیوب. لو جی تیجی لوکیشن بھی کھولتی ہے, ایگزٹ 579 فرام ہائی وے 401.